अष्टपाहुड़ लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं
कावूणनमुक्कारं जिनवरवसहस्रवड्डमानस दंशनमग्गं वोच्छामि यः कम्मं समासेन। यह कुंदकुंद आचार्य भगवान द्वारा रचित जो अष्टपाहुड़ है, उस अष्टपाहुड़ के ऊपर जो स्वामी जी ने प्रवचन किए हैं, उस अष्टपाहुड़ प्रवचन पुस्तक के 50 नंबर के पृष्ठ पर हम आए हैं। यहाँ जो नया पैराग्राफ होता है उससे चालू करते हैं, जिसे ऊपर कहे गए मार्ग की प्रतीति हो और विपरीत मार्ग को न माने उसे सम्यक दर्शन होता है। केवली की पूर्ण दशा और मुनियों की साधक दशा, ये दोनों दशाएं आत्मा के स्वभाव में से उत्पन्न हुई है। अतः सर्वज्ञ पद और उसकी साधक मुनि दशा की पहचान करते ही आत्मा के स्वभाव की प्रतीति होती है। यानी जब हम वो किस तरह से उस पद को पहुंचे हैं, ये जब ख्याल में लेते हैं तो हमें अपने ही आत्मा का शरण लेना है, ये बात निश्चित होती है। आत्मा के आनंद के स्वसंवेदन पूर्वक ऐसे मार्ग की प्रतीति होती है, वह सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन के परिणाम अति सूक्ष्म है, वे छद्मस्थ को सीधे ज्ञात नहीं होते, किंतु उस सम्यक दर्शन के साथ स्वानुभूति आदि परिणामों से सम्यक दर्शन का निर्णय होता है। इस कारण वे सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है। देखो, यह सम्यक दर्शन ही आत्म के धर्म का सच्चा आधार है। इसके अतिरिक्त बाहर में पैसा या शरीर आदि कोई आधार नहीं है। यहाँ तो यह बताना है कि सम्यक दर्शन होने पर जीव की दशा बदल जाती है और अपने अंतर में आनंद के स्वसंवेदन से उसका निर्णय होता है। जैसे निर्धन मनुष्य को लाख रुपयों की प्राप्ति हो तो उसके दिन फिर जाते हैं, लकड़ी का सहारा भी छूट जाता है, वैसे आत्मा अनादि से अज्ञान दशा के कारण पर्याय में निर्धन था। जहाँ आत्मा के स्वभाव का अपूर्व लाभ मिला, वहाँ अंतर में ज्ञान आनंद की दशा प्रकटती है। अपूर्व स्वसंवेदन होने पर ज्ञात होता है कि अहो, सम्यक दर्शन के बिना ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव नहीं होता। ऐसे अपूर्व आनंद के प्रकट होने से दृष्टि में से पुण्य पाप का सहारा छूट जाता है, अर्थात पुण्य पाप की रुचि छूट जाती है और आत्मा की दशा के दिन फिर जाते हैं। देखो, ऐसे सम्यक दर्शन के से धर्म की शुरुआत होती है। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना व्रत तप त्याग आदि जो भी करे, वे सब रण में पीठ दिखाने के समान व्यर्थ है। उनमें कहीं आत्मा को शरण नहीं है। ये रण में पीठ दिखाने के, ये समझ में आए कि नहीं? हाँ, यानी हम सामने से मारे तो अपन कम से कम प्रोटेक्शन, विरोध तो कर सके, प्रतिकार कर सके, लेकिन पीछे कब मारेगा और कहाँ मारेगा पता ही नहीं ना। इसलिए वो जैसा व्यर्थ है, रण में से भाग जाना। हाँ, वो तुम ऐसा उल्टा थोड़ी भागोगे, इधर ही मुकर के भागोगे ना, तो तो पीठ दिखाओगे
मुझे
शत्रु
लगता
को।
है कि गुजराती में रणमा पोक ऐसा कुछ कहावत आती थी,
पोक मुकवा जो वो
ये तो रण में अरण्य रुदन जिसको कहते हैं वैसे वो
लिखा होगा।
मूल मूल देखना पड़ेगा जरा। हाँ ये हाँ वो रण यानी वो जिसको कहते ने लेजर वो मूल में देखना पड़ेगा।
उन्होंने रणमा पोक मुकवा जेवु छे जो लिखा होगा उसका अर्थ तुम्हारा वहाँ बोमा बोम करना कुछ फजूल है,
कुछ काम का नहीं।
वो बात बताने के लिए इन्होंने नई प्रावर निकाल के रण में पीड़ दिखाने
ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि रण में पीड़ दिखाने यहाँ अप्लाई नहीं होता है बराबर।
स्वामी जी ऐसा कभी बोलते भी नहीं थे, फिर भी ठीक है अभी जो है वो पढ़ना है अपने को। उनमें कहीं आत्मा को शरण नहीं है, स्वसंवेदन ज्ञान हो, आत्मा का अनुभव हो, ऐसे चिन्ह से सम्यक दर्शन का पता चलता है। अब यहाँ कहते हैं कि ऐसे सम्यक दर्शन को ही निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं, जिसको स्वभाव के स्वामीपने का भान नहीं और विकार का ही स्वामी होकर वर्तता है वह धर्म से भ्रष्ट है। सम्यक दर्शन के परिणाम सूक्ष्म होने पर भी स्वसंवेदनादि से उनका निर्णय होता है, वहाँ स्वयं को स्वयं के सम्यक दर्शन का निर्णय हो तो स्वयं के ही स्वसंवेदन प्रत्यक्ष की मुख्यता से होता है। देखो यहाँ कहा है कि स्वयं को स्वयं के स्वसंवेदन से सम्यक दर्शन की खबर पड़ती है, क्या कहा यानी हमें केवल ज्ञानी को पूछने को जाने की जरूरत नहीं, ऐसा बता रहे। क्या कहा? स्वयं को स्वयं के स्वसंवेदन से, ये स्वसंवेदन कौन से गुण की पर्याय मिली भाई? हाँ ज्ञान गुण की, वेदन होना अनुभव होना ये ज्ञान में ही होगा ना भाई। सम्यक दर्शन की खबर पड़ती है, अज्ञानी जीव कहते हैं स्वयं को अपनी खबर नहीं पड़ती है, किंतु ऐसा अंधा मार्ग नहीं है। अपने स्वसंवेदन से अपने सम्यक दर्शन का निस्संदेह निर्णय होता है तथा दूसरों के, देखो अभी क्या कहना चाहते हैं, सम्यक दर्शन का निर्णय भी उसकी परीक्षा से, उसके वचनों से तथा कायादिक की चेष्टा से हो सकता है। देखो उपदेश से निर्णय हो जाता है, जिसकी प्ररूपना ही विपरीत हो, ढिलमिल कथन आता हो, आत्मा की रुचि की महिमा न आती हो और लोक और व्यवहार की रुचि आती हो, वहां तो वचनों से ही निश्चित हो जाता है कि यह जीव मिथ्या दृष्टि है तथा समकीति जीव के वचन से भी उसके अंतर के सम्यक दर्शन का निर्णय हो जाता है। किंतु वह निर्णय करना तो स्वयं को आना चाहिए ना, बाउल पर से तौल हो जाता है। ये बाउल लिखा है ऊपर कहे अनुसार ज्ञान के स्वसंवेदन से अपने सम्यक्त्व का तथा वचनादि से दूसरों के सम्यक्त्व का निर्णय होता है, यह व्यवहार है। इसे व्यवहार क्यों कहा? कारण कि सम्यक्त्व के चिन्ह द्वारा उसका निर्णय किया है, अतः वह व्यवहार है। और परमार्थ सर्व
बाह्य चिन्ह द्वारा निर्णय इसलिए व्यवहार है। पहले बात आई थी नहीं, सम्यक्त्व का ये बाह्य चिन्ह है इसलिए उसको व्यवहार का, यानी वो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है, ज्ञान की है। सम्यक्त्व को चिन्ह का, यानी चिन्ह तो है, वो मुख्य चिन्ह है सम्यक्त्व का, फिर भी उसको वो व्यवहार इसलिए कहा कि वो बाह्य है इसलिए।
अपने सम्यक दर्शन का निर्णय तो स्वयं को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से होता है, अंतर में आनंद के वेदन से ज्ञान द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय होता है। ये बात हमने मतलब आई थी, वो देखी पड़ी थी, क्या स्व संवेदन प्रत्यक्ष है और आनंद का वेदन ज्ञान के द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय होता है, तथापि अन्य गुण द्वारा सम्यक्त्व की पर्याय का अविनाभाव रूप साधन से निर्णय करना वह व्यवहार है, और ज्ञान में सीधे ही सम्यक्त्व परिणाम को जानना वह परमार्थ है। स्वयं को परमार्थ समकित है, ऐसी तो समकिति को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से खबर पड़ती है, किंतु सम्यक्त्व के साथ अविनाभावी ऐसे आनंद और ज्ञान द्वारा उसका निर्णय किया, इसलिए उसे व्यवहार कहा, और व्यवहारी छद्मस्थ जीवों को ऐसे व्यवहार का शरण कहा है। यहाँ व्यवहार का शरण कहने से रागादि का शरण नहीं समझना, किंतु अविनाभावी संबंध से ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय करना, उसको यहाँ व्यवहार कहा है। यदि ऐसा व्यवहार न हो तो व्यवहार का लोप हो जाता है। यह जीव समकिति है या मिथ्या दृष्टि, यह निश्चित करने से कुछ नहीं रहता, यह निश्चित करने को कुछ नहीं रहता, किंतु भगवान का मार्ग ऐसा नहीं है। देखो अभी क्या कहा, व्यवहार कब कब होता है? व्यवहार नहीं का कथन किसको कहना है, ऐसा मुझे कहना है। एक का दूसरे पर आरोप करना, देखो हमने पहले पढ़ा था बहन, एक मिनट उसको ही देखते ना तो फट से पता लगेगा। फिर ये हमने देखा था ना कि एक देश और सर्वदेश वाली बात कहाँ देखी थी भाई, याद है किसको? हाँ देखो पेज नंबर 38। हाँ क्या कहना, प्रयोजनवश एक देश को सर्वदेश रूप कहना, यानी एक देश को, यानी ये जो व्यवहार है उसको सर्वदेश यानी निश्चय कहना, यानी जैसे हम आत्मा के स्वसंवेदन को सम्यक दर्शन कहते हैं तो राग भाव को भी सम्यक दर्शन कहना वो उपचार का कथन है। और दूसरा एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप करके कथन करना। अभी यहाँ क्या हो रहा है, सम्यक दर्शन जो है वह श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वहाँ साथ में अविनाभावी रूप से ज्ञान भी है, तो ज्ञान ने जाना तो उस बाह्य चिन्ह के द्वारा यह सम्यक दर्शन हुआ ऐसा कहना यह व्यवहार है। अगर यह व्यवहार को हम नहीं मानते तो व्यवहार का लोप हो जाएगा। एक पर्याय जो है श्रद्धा गुण की पर्याय, उसको जानने के लिए ज्ञान गुण का सहारा लिया और उसके द्वारा कहा कि ये सम्यक दर्शन इसको हुआ। चिन्ह क्या है कि स्वसंवेदन रूप यानी ज्ञान गुण की जो पर्याय है, उस पर्याय से हमें ज्ञात हुआ कि ये श्रद्धान सही हुआ है इसका, तो सम्यक्त्व कहो या सम्यक दर्शन कहो, यह श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वह पर्याय अन्य पर्याय से जानने में आ रही है ये कहना यह व्यवहार है। ये व्यवहार का अगर हम व्यवहार को नहीं मानेंगे तो इस व्यवहार का लोप होगा, यानी अपने को आत्मानुभूति हुई है ये पता ही नहीं लगेगा। ये हमने चौथी लाइन में पढ़ा था, यदि ऐसा व्यवहार कैसा व्यवहार, थर्ड लाइन पढ़ रहा हूं मैं बहन, अविनाभावी संबंध से, अविनाभावी यानी क्या, एक हो तो दूसरा हो, श्रद्धा गुण है तो ज्ञान गुण है, श्रद्धा गुण है तो चारित्र गुण है, इस तरह से। तो यहाँ अविनाभावी संबंध किसका, श्रद्धा और ज्ञान का, ज्ञान द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय करना, उसको यहाँ व्यवहार कहा है। यदि ऐसा व्यवहार न हो, यानी ये व्यवहार है तो झूठा है ऐसा करके हम उड़ा देवे तो व्यवहार का लोप हो जाता है,
यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं रहेगा।
हाँ
क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये पता ही नहीं है, तो फिर चौथे गुण साइनी श्रावक किसको कहेंगे, मुनि किसको कहेंगे, पता ही नहीं ना, समय दर्शन हुआ ही नहीं है, तो हम आगे बढ़े हैं ये कैसे जानेंगे, ख्याल में आती बात है। तो ये जो अगर जानने रूप व्यवहार अपने को समय दर्शन हुआ है, इसका निर्णय ज्ञान के द्वारा हुआ, ये व्यवहार है। और यदि ऐसा निर्णय न हुआ तो व्यवहार न हो, तो ऐसा अगर निर्णय न हो तो आगे का मोक्ष मार्ग ही नहीं रहेगा, ये बात बताना चाहते।
अगला वाक्य देखो, यह जीव समकिति है या मिथ्या दृष्टि, यह निश्चित करने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि हमने उस व्यवहार को ही उड़ा दिया। किंतु भगवान का मार्ग ऐसा नहीं है, कोई ऐसा कहे कि अपने को भव्य अभव की खबर नहीं पड़ती, अर्थात आनंद काल में भी मोक्ष नहीं होगा, ऐसी शंका उसे रहती है, ऐसा जीव भव रहित भगवान की वाणी का निर्णय नहीं कर सकता। अभी तो जिसे अनंत भव में परिभ्रमण की शंका घेरे रहती हो, उसको धर्म या मुनिपना हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यहाँ कोई शंका करता है कि सम्यक दर्शन तो केवली गम्य है, इस कारण अपने सम्यक दर्शन होने का निर्णय नहीं हो सकता, अतः अपने को सम्यक दर्शन नहीं मानना। देखो यह शंका विपरीत है, यानी गलत है। अरे भाई, अपने सम्यक दर्शन का निर्णय स्वयं को नहीं हो सकता, ऐसा सर्वथा एकांत मानना तो मिथ्यात्व है। हाँ, केवली जैसा प्रत्यक्ष अपने को नहीं दिखता, यह सत्य है, किंतु स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सम्यक्त्व का निर्णय नहीं होता, ऐसा मानना तो महाविपरीतता है। अपने सम्यक्त्व का निस्संदेह निर्णय समकिति को हो जाता है, समकित का निर्णय न हो सके तो व्यवहार का ही लोप हो जावे। किसकी वंदना करनी, किसकी वंदना नहीं करनी, यह कुछ भी निर्णय नहीं हो सकेगा, अर्थात व्यवहार का लोप हो जाएगा, लोप किया है वो। सम्यक्त्व का निर्णय न होने से तो समस्त मुनि श्रावक की प्रवृत्ति भी मिथ्यात्व रूप ठहरेगी, तथा वे अपने को समकिति न माने और सभी जीव अपने को मिथ्या दृष्टि ही माने, तो फिर ये गुरु है, ये धर्मात्मा वंदनीय है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। सामने वाला जीव सम्यक दर्शन सहित है या सम्यक दर्शन रहित है, इसका निर्णय किए बिना वंदनादि व्यवहार का विवेक कहाँ बनेगा। अहो, मुनि दशा तो अलौकिक है, ऐसी मुनि दशा होने के पूर्व ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होते ही तुरंत मुनि हो जाए ऐसा नहीं, परंतु उसको यथार्थ मुनि दशा का निर्णय तो हो ही जाता है, और स्वयं को निजात्मा के सम्यक दर्शन की निशंकता भी हो जाती है। जो यह कहते कि ऐसा निर्णय नहीं हो सकता, उसको तो भगवान के मार्ग की श्रद्धा ही नहीं है। जिसको मैं अब भव रहित होऊंगा ऐसी भी निशंकता नहीं है, उसको धर्म कैसा। समकीति को तो अपनी निशंकता, नी के बाद दो विसर्ग चाहिए, हो दो शून्य, निशंकता होती ही है। ये बात समझ में आ रही भाई? अश्विन भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो रोकना हो, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं केवल पढ़ रहा हूँ। अभी तो ये तो बात बहुत बार हो चुकी है यहाँ पर। सम्यक दर्शन के निर्णय बिना यह समकीति है, यह श्रावक है, यह मुनि है, ऐसा निर्णय भी कैसे होगा। अतः परीक्षा पूर्वक सम्यक दर्शन का निर्णय करने के पश्चात शंका न रखना, यानी उसको तो शंका होगी ही नहीं वास्तव में। अपने को स्वसंवेदन से निर्णय हुआ, वहां मुझे मिथ्यात्व होगा ऐसा संदेह धर्मी को रहता ही नहीं। देखो अंतर की दशा हुई हो और स्वसंवेदनादि हुआ हो उसकी यह बात है। मूढ़ जीव अपने को स्वच्छंदता से समकीति मान ले ऐसे जीवों की यहाँ बात नहीं है, यह तो जैन मार्ग है, वस्तु के स्वभाव का मार्ग है। अभी अंतर के में स्वभाव का भान भी न हुआ हो और मान ले कि हम समकीति है, हम निशंक है, तो वह भी महास्वच्छंदी है, उसको जैन मार्ग की खबर नहीं है। जैसे कड़वे चिरायती की थैली पर शक्कर नाम लिख देने से कोई चिरायता मीठा नहीं हो जाता। ये कड़वा चिरायता मालूम है ना?
करिया तो क्या कहते हैं?
हाँ जो भी है
उसी को यह चिरायता कहते हैं हिंदी में।
वैसे ही अभी तो राग से धर्म माने, स्वच्छंदता का पोषण करें और जैन नाम धरा कर अपने को समकीति माने, ये सबसे गड़बड़े। किंतु इससे कोई अंतर में सम्यक दर्शन नहीं हो जाता, उल्टे वह तो स्वच्छंदी होकर मिथ्यात्व का पोषण करता है। समकीति का जहाँ निर्णय हो वहाँ शंका नहीं रखना, मिथ्या दृष्टि तो अन्यमति है। क्या कहा? क्योंकि उसकी मान्यता ही बिल्कुल जुदी है, विपरीत है ना। जो चिदानंद स्वभाव की दृष्टि से मिथ्यात्व को जीतता है वह जैन है। हाँ,
जब तक वो नहीं होता तब तक अन्यमति अजैन कहाँ उसको?
कौन? जिसको ऐसे स्वभाव का भान नहीं है और राग से धर्म मानता है वह जीव अन्यमति है, यानी अजैन है, मिथ्या दृष्टि है, जो भी समझना है। स्वयं अपने को मिथ्या दृष्टि माने वह तो अन्यमति हुआ, इसका अर्थ नहीं समझना कि अंतर में स्वभाव के स्वसंवेदन बिना भी अपने को समकीति मान लेना, सम्यक दर्शन का निर्णय स्वयं को अपने स्वसंवेदन से होने पर समकीति स्वयं निश्चंक हो जाता है और इस प्रकार सम्यक दर्शन का निर्णय होता है। अतः सम्यक दर्शन का निर्णय नहीं हो सकता, ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक दर्शन का चिन्ह है और उसके द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय हो सकता है। ये अभी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया डॉक्टर, कि स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक दर्शन का चिन्ह है, ये स्वसंवेदन ज्ञान चिन्ह है और उसके द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय हो सकता है। अब कहते हैं यह बात करके अब तत्वार्थ श्रद्धान की बात करते हैं। तत्वार्थ श्रद्धान भी सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है, ये दूसरा पॉइंट। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व हैं। इन सात तत्वों के साथ पुण्य पाप को गिनने से नौ पदार्थ हैं, इन्हें नौ तत्व भी कहते हैं। ऐसे तत्वों की श्रद्धा अर्थात उनके सन्मुख बुद्धि रुचि अर्थात उस रूप अपना भाव करना, प्रतीति अर्थात जिस प्रकार सर्वज्ञ भगवान ने कहा उस प्रकार ही है ऐसा विश्वास करना, ऐसे तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। दर्शन अर्थात जैन मार्ग क्या है उसका यह वर्णन चल रहा है। अंतर में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा जो जिन भाव भाते हैं, जो जिन भाव भाते हैं, जिन भावना अर्थात राग सहित रहित स्वभाव की भावना यह जिसको वर्तती है ऐसी मुनि धर्म मुद्रा है। मुनि स्वयं धर्म मुद्रा है ऐसा कहते हैं, वह दर्शन मार्ग है। ऐसे मुनिराज को जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म है उसमें से यहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। धर्मी गृहस्त को भी ऐसा सम्यक दर्शन होता है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध चिदानंद है, उसमें विकार नहीं है। एक समय का विकार वह मैं नहीं, मैं ज्ञानानंद मूर्ति हूँ, ऐसे भेद ज्ञान द्वारा जिसको सम्यक दर्शन हुआ है और तदुपरांत जिसने अंतर में लीन होकर चारित्र दशा प्रकट की है तथा बाह्य में भी परिग्रह रहित दशा प्रकट हो गई है, ऐसी जो दशा है वह दर्शन का मार्ग है, वही धर्म की मूर्ति है। निर्विकार स्वभाव की दृष्टि में आत्मा के आनंद का अनुभव हो तभी से धर्म की शुरुआत होती है। क्या देखो कितनी सरल बात बताई कि स्वभाव कैसा है, तो कहते निर्विकार है। उसकी दृष्टि में यानी उसके तरफ अपना उपयोग लगाए तो कहते आत्मा में आनंद का अनुभव होता है, तभी से कहते धर्म की शुरुआत हुई है। ये धर्म की शुरुआत में कौन सा तत्व लगेगा भाई, मिली भाई? अरे वाह बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम लिया आपने। शुरुआत तो संवर में, अभी पर्याय में विकार है, तथापि मैं तो शुद्ध चिदानंद मूर्ति आत्मा हूँ, विकार मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान हुआ और चैतन्य स्वभाव की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन हुआ, वहाँ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से सम्यक दर्शन का निर्णय हो जाता है, ऐसा सम्यक दर्शन वह धर्म का मूल है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, जड़ जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। तत्वार्थ श्रद्धान भी सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। जीव जीवादि जो तत्व है उन्हें जैसा है वैसा समकीति श्रद्धता है। अंतर में निर्विकल्प चिदानंद स्वभाव की प्रतीति के साथ नव तत्वों की यथार्थ प्रतीति भी होती है, तथा उन तत्वों को जैसा का तैसा आचरता है, हेय को हेय जानता है, उपादेय को उपादेय जानकर आदर करता है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दृष्टि के होता है। अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, फिर ये मत बोलना अरे मेरा ध्यान नहीं था। ओ क्या कहते हैं, हेय को हेय जानता है, ये हेय कौन है, कौन बताना चाहेगा? एक, हाँ आप बताना चाहेंगे? दो, आप हेय क्या है, हेय को हेय जानता है कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो कौन? हेय का अर्थ मैंने नहीं पूछा, त्यागने योग्य क्या है? शांति करो शांति करो, कौन बोल रहा है, मेरे आवाज तो आ रही मुझे, हाँ हाँ बाहर की, अच्छा हाँ हाँ बोलो डॉक्टर, हाँ क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये तत्वार्थ श्रद्धा नहीं ना, वह सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है, तो हम विषय को भूले नहीं भाई, हाँ तो उसमें हेय कौन है, आश्रय और बंध को हेय जानता है, और उपादेय कौन है, बापा बताएंगे, हाँ जीव तत्व उपादेय, हाँ अच्छा तो ये कैसा कैसा उपादेय है बताओ। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपने बताया जीव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, यह उपादेय है, ये बात बिल्कुल सही है, उसमें भी थोड़ा सा कोई फर्क है, वो बताना है आपको। हाँ संवर निर्जरा और मोक्ष तीनों एक देश उपाधेय है, ऐसा आप कह रहे हैं, हाँ आगे कोई बात नहीं, भले भाई मिस्टेक हो उसमें क्या है, प्रयत्न करना, घबराना मत, जल्दी जल्दी करना। जीव तत्व पूर्ण उपाधेय, अच्छा अश्विन भाई आप क्या बताना चाहते थे? हाँ हाँ जीव और मोक्ष सर्वदेश उपादेय है। हाँ, और समर और निर्जरा हाँ कोई बात नहीं। हाँ प्रेरणा बहन ने आपने कहीं बोला नहीं, पर ऐसा ऐसा किया तो घबर गए बेचारे। हाँ हाँ बेचारा घबर गया। हाँ हाँ आप कुछ बता रही थी बहन, संवर और निर्जरा एक देश प्रकट करने योग्य उपादेय, इतना लंबा बोलना है। हाँ और मोक्ष तत्व जो है वह पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय है। और आगे हाँ उपाधेय है, पर कैसा उपाधेय है? ठहरो ठहरो ठहरो, गाय मत करो, दिव्या बहन को लगेगा, दिव्या बहन को लगेगा हमको पूछते ही नहीं, ऐसा नहीं लगता है? अच्छा उत्तर दे। उपाधेय तो उन्होंने बताया ना भाई, सबने बताया, लेकिन जैसा संवर निर्जरा और मोक्ष में आपने फर्क बताया, वैसा जीव भी कैसा होना चाहिए? हाँ बोलो बहन। नहीं पूर्ण उपाधेय नहीं। हाँ अभी हाँ लक्ष्मी 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 आश्रय करने योग्य उपाधेय है। देखो भाई, हम अपने आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे तो ये बाकी के पर्याय प्रकट नहीं होगी भाई। भाई समझ में आया? कोई बात नहीं, आप दो तीन दिन से तबीयत बराबर नहीं आपकी, आपको अलाउड है, भूल जाना। नहीं भाई, इज वेरी शार्प, ऑलवेज गिव राइट। हाँ अच्छा अलाउड है, चलो चलो चलो, आपको भी अलाउड है, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये बात बार बार यहाँ बोली जाती है और बार बार मेरी तो आदत है प्रश्न पूछने की, फिर भी हमको एक दो जन ऐसे हमारे मित्र मिल जाते हैं कि मेरे जैसे अज्ञानी है। हाँ भाई, ये सात तत्वों, ये बाह्य चिन्ह बताया हो, अब उसकी श्रद्धा ही सही नहीं है, तत्व का यथार्थ ज्ञान ही नहीं हमें, तो श्रद्धान कहाँ से होगा? इसलिए उसको बार बार हम देखें, और भले ना गलत आ जाए उसमें क्या है, सुबह का भूला, अच्छा सब याद है। हाँ चलो चलो, तो क्या कहा? देखो उपाधेय को हे जानता है और उपाधेय को उपाधेय जानता है। अभी एक छोटी सी बात रह गई, बोलना नहीं कोई भी, जिसको प्रश्न को उत्तर देना हाथ उठाए। ये जो अजीव तत्व को इसमें रखा ही नहीं है किधर, तो अजीव तत्व कैसा है? हाँ जान, उसका एक शब्द में क्या बोलेंगे? एक अक्ष गेय, बहुत अच्छा वो बोल चुका। हाँ हाँ बोले, कहीं से तो आवाज आई। हाँ नहीं, इन्होंने तो स्वयं ने बताया, बाद में बाहर से आई आवाज, गेय तत्व। तो ये तीन नाम है ना, गेय हेय और उपादेय, वैसा देखा जाए तो सारो ही तत्व, सातो ही तत्व गेय तो जरूर है, जाने बिना कैसा निर्णय करोगे, लेकिन उसकी मुख्यता कहाँ है कि वो उपाधेय है, ये केवल गेय और वो दो हेय है। जैसा हम कहते हैं कि अपने भी घर को जानना और पर के भी घर को जानना, क्यों साहब? कि हम पर के घर में अपना घर समझ के घुस जाएंगे, वैसे हमें जिसको हेय करना है वो हेय क्यों है ये भी हमें पता नहीं होवे, तो कैसा हम उसको छोड़ेंगे? हाँ साहब। हाँ चलो आगे बढ़ेंगे, तथा हाँ हाँ अभी बाद में बोलने को टाइम चाहिए ना, अभी जरा चुप करो। देखो, तथा प्रशम संवेग अनुकंप और आस्तिक्य, ये भी सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है। अब इनका वर्णन करते हैं। चिदानंद स्वभाव की प्रतीति रूप, प्रतीति रूप यानी श्रद्धान रूप निर्विकल्प भाव है, वह तो यथार्थ समकित है, और उस सम्यक दर्शन की भूमिका में होने वाले प्रशम वैराग्य आदि भाव उस सम्यक दर्शन के बाह्य चिन्ह है। यानी हम इस तरह भी समझ सकते हैं, जिनके सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है उनके इस रूप परिणाम भी होते, प्रशम कहो या संवेग कहो, अनुकंपा कहो, आस्तिक्य भाव, ये उनके होते ही है, लेकिन ऐसा मत लेना कि ये भाव होने होते हैं उनके सम्यक दर्शन होता है, ऐसा उल्टा मत लेना हो, क्योंकि ये तो आफ्टर ऑल शुभ परिणाम है हा? और शुभ परिणाम ही जिनके हैं, शुद्ध हुए नहीं हैं, उनके शुद्ध है ऐसा कहना योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा तो जरूर होगा कि जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उनको इन भाव साथ में रहेंगे, निश्चय के साथ व्यवहार होता ही है। अब आगे प्रशम, प्रशम भाव किसको कहना, अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का उपशमन होना प्रशम है। ये कहते हैं अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का उपशम होना ये प्रशम है। तो ये क्रोधादि कषायों का उपशम कब होता है मिली भाई, अनंतानुबंधी क्रोधादि कषाय इनका उपशम कब होता है? चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान का काल कितना होता है अधिक से अधिक? कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं है, प्रेरणा बिन बताएगी उसमें क्या है, आपको भी मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आपको मिसगाइड कर रहे थे वो। हाँ हाँ यहाँ मैंने ये पूछा कि अनंतानुबंधी क्रोधादि कषायों का उपशम होना ये कब होता है, ये मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा चौथे गुणस्थान में। ये हाँ आप क्या कह रहे हैं, सुनो भाई, ये क्रोधादि कषायों का उपशमन कभी होगा, सुनो, वो जब सम्यक्त्व करने जा रहा है चौथे गुणस्थान में, कि जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है वह पहले ही अनंतानुबंधी का उपशम करेगा। वो उपशम को कौन सा उपशम कहते हैं, अप्रशस्त उपशम, ये बात ख्याल है। अब ये बात यहाँ बता रहे हैं, अब आगे की जो बात है ना आपकी द्वितीय उपशम के टाइम में वो बात तो होगी नहीं। अब कहते हैं अंदर में आत्मा की शांति प्रकटि है, अभी ये तो निश्चय से उसको यहाँ प्रशम भाव कहा। क्या
अनंतानुबंधी का उदय नहीं है सम्यक तो होने पर, इसलिए उसको प्रशम कहा है। अनंतानुबंधी के अभाव में जो मंद कषाय चलते हैं उसको यहाँ प्रशम कहा।
हाँ,
यानी कर्मों की उपशम अवस्था वो नहीं लेना एक्चुअली उसको, क्योंकि वैसे तो उसको उपशमित ही रहेगा, क्योंकि उसका उदय जब तक नहीं है, जब तक सम्यक तो चालू रहेगा, वो वेदक सम्यक तो हो या उपशमिक सम्यक तो हो, अनंतानुबंधी का तो अप्रशस्त उपशम ही रहेगा। उदय का नहीं होना वही अप्रशस्त उपशम है। यानी ये प्रशम अर्थ किसको कहते हैं, मंद कषाय रूप को वह प्रशम कहा। कौन से मंद, अनंतानुबंधी के अभाव रूप मंद।
यहाँ अभाव की जगह उपशम लिखा है।
हाँ, उपशम ही होता है, यानी कौन सा अप्रशस्त उपशम, यानी उदय में नहीं आना।
तो अब उसको अनुदय कहे तो
हाँ चलेगा ना।
हाँ, अब आगे उसी पैराग्राफ के लास्ट दो वर्ड्स, अंदर में आत्मा की शांति प्रकट है वह प्रशम भाव है। वह प्रशम भाव आत्मा का अकषायी परिणाम है, वह गुण रूप भाव है, राग भाव नहीं। किंतु सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वह भाव जुदा है, अतः उसे सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण कहा है। प्रशम अर्थात साधारण शुभ भाव रखना या कषाय मंद रखना उसकी यहाँ बात नहीं है। क्या कहा, प्रशम का क्या है, साधारण शुभ भाव रखना या मंद कषाय रखना उसकी बात यहाँ नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन होने पर आत्मा में वितरागी शांति प्रकटे और अनंतानुबंधी कषाय का उपशम हो जाए उसका नाम प्रशम है। ऐसा प्रशम समकीति के होता है, ऐसा प्रशम समकीति के होता है। इस कारण प्रशम को सम्यक दर्शन का चिन्ह कहा है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा राजपाट में हो उस समय भी उनके अंतर के अंतर में अकषाय उपशांत भाव का रस तो वर्तता ही है, और अज्ञानी मूड जीव हाथ में पीछी लेकर पूजता है, पूजता हो तो भी उसके जरा भी प्रशम नहीं है। ये पू दीर्घ चाहिए। जैसे कोई अरबपति मनुष्य सादा वेश धारण करके निकला हो तो भी उसके अंदर में अरबपति पने की हूंक है, और दूसरा मनुष्य बाहर में पुलिस जैसा साफा और बूट का ठाट करता हो किंतु घर के अंदर चारों कोने खाली हो, एकदम काली हंडिया में हाथ से खिचड़ी बनाकर खाता हो, वैसे यहाँ जिसको अंतर में आत्मा का स्वसंवेदन ज्ञान हुआ है, अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ है, ऐसे समकीति जीव को अंतर में चैतन्य स्वभाव की हूक वितरागी शांति वर्तती है, वह प्रशम है। युद्ध में या राजपाट में संयोग में खड़े हो, अल्प राग द्वेष भी होते हो, तथापि धर्मी की दृष्टि में चैतन्य स्वभाव की हूंक वर्तती है, अर्थात उसको प्रशम वर्तता है। ये गुजराती में कौन सा शब्द होना चाहिए? हूंक वर्तती, हूंक यानी उसकी महिमा वर्तती है, ऐसा क्या लेना? भूख वर्तती है, ये शब्द तो मैं पहले ही सुन रहा हूँ। ये गुजराती में हूफ कहवाए ना, हूफ क्या होता है? हाँ वही, उसका ही अर्थ है खू हूफ चढ़े इसे कुमारी। मेरे हिसाब से उसके साथ का जो कोई उसका रिलेशन है वो वर्तता है, वहां स्वभाव के साथ जो एकत्वपना है वो। चलो ठीक है, अज्ञानी जीव बाहर के ठाट बाट में फिरता हो, अर्थात व्रत तप त्यागादि करे, दया पाले, किंतु अंतर में शुभ राग द्वारा धर्म मानता है, उसके घर में चारों कोने खाली है, अर्थात उसको अंतर में आत्मा की शांति का अंश भी नहीं है, उसको शुभ राग होने पर भी प्रशम नहीं है। अतः कहा है कि समकीति के बाह्य चिन्ह के रूप में प्रशमादि होते हैं, अंतर में शांति के वेदन द्वारा सम्यक दर्शन का निर्णय हो जाता है। अतः वह सम्यक दर्शन का बाह्य लक्षण है, किंतु वह लक्षण सम्यक दर्शन से यानी श्रद्धा गुण से भिन्न गुण की पर्याय है, अतः उसको बाह्य लक्षण कहा है। देखो यहाँ पर उत्तर आ गया डॉक्टर, व्यवहार क्या कहा कि वह लक्षण कौन सा? अभी जो प्रश्न बताया, सम्यक दर्शन से श्रद्धा गुण से भिन्न गुण की पर्याय है, कौन को? प्रशम वाला, अतः उसको बाह्य लक्षण कहा है। अब कहते प्रशम का बाह्य चिन्ह क्या है, अर्थात प्रशम को किस प्रकार पहचानना? वह कहते हैं प्रशम वह ज्ञानी का अकषायी शांत भाव है। अकषायी शांत भाव ये कौन से गुण की पर्याय है? हाँ प्रतिपत है, चार इत्र गुण, और उसके द्वारा सम्यक दर्शन को ढूंढ रहे ना, तो व्यवहार हो गया। वो चिन्ह बता रहे ना उसका, हाँ? उसके समक्ष मिथ्या दृष्टि के विपरीत भाव को भी देखते हैं। वह इस प्रकार सर्वथा एकांत तत्वार्थ के कहने वाले जो अन्य मत उनकी मान्यता होना, वह अनंतानुबंधी कषाय है, वह मिथ्या दृष्टि का चिन्ह। अनेकांत जैन मत के अतिरिक्त राग में धर्म मनवाने वाले जो एकांत मत उनकी जिसको मान्यता हो, वह जीव मिथ्या दृष्टि है तथा बाह्य वेश में सत्यार्थ अपने का अभिमान करना और शरीर में आत्मबुद्धि रूप अभिमान करना भी अनंतानुबंधी कषाय का कार्य है और वह मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। देखो यहाँ बाह्य वेश में सत्यार्थ अपने का अभिमान कहा, क्या कहा, इसका तात्पर्य क्या? तो कह रहे वस्त्रादि परिग्रह युक्त पना तो बाह्य यथार्थ बाह्य वेश भी नहीं है, वह तो विपरीत वेश है। वस्त्रादि सहित मुनिपना मानना तो अनंत संसार का कारण है, किंतु बाह्य वेश को अर्थात शरीर की नग दिगंबर दशा को ही सत्यार्थ मुनिपना मान ले तो यह भी देह बुद्धि वाला मिथ्या दृष्टि है। मुनि के शरीर की दशा दिगंबर होती है यह बात सत्य है, किंतु अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकटे बिना अकेले शरीर की दिगंबर दशा को ही मुनिपना मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि ही है। निर्ग्रंथ दृष्टि और निर्ग्रंथ वृत्ति हो ऐसी दशा ही मुनि दशा है। देखो कितने शॉर्ट में सब बातें बता दी, निर्ग्रंथ दृष्टि और निर्ग्रंथ वृत्ति, ये दृष्टि में श्रद्धा और ज्ञान दोनों को लेना और निर्ग्रंथ वृत्ति ऐसी ही दशा, ये तो अंतरंग दशा है, यह मुनि दशा है। जैसे केसर लेने के लिए निमित्त रूप बरंडी इत्यादि होती है, किंतु बरंडी वह केसर नहीं है। ये बरंडी क्या होता है भाई? हाँ, हो सकता है क्योंकि हमें ये हिंदी परिचित नहीं है। निर्ग्रंथ क्या कहा? जैसे केसर लेने के लिए निमित्त रूप बरंडी, मेरे हिसाब से अब मैं तो शायद गलत भी बोलता हूँ, तो जैसा केसर जिस डब्बी में आता हो जिस इसमें उसको बरंडी बोलते हो, ये क्या कह रहे हैं? जैसे केसर लेने के लिए निमित्त रूप बरंडी इत्यादि ही होती है, किंतु बरंडी वह केसर नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो केसर अर्थात मुनि दशा, उसके निमित्त रूप भी दिगंबर दशा ही होती है। ये बाह्य पैकिंग हो गया ना, यानी उनके शरीर की जो बात है मुनि दशा, उसके निमित्त रूप भी दिगंबर दशा ही होती है। जो ऐसे अंतर्बाह्य दशा के बिना मुनिपना मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। जो जीव ऐसे मार्ग की सच्ची श्रद्धा रखता है उसको भले ही चारित्र दशा न हो तथापि वह धर्मी है, और इससे विपरीत श्रद्धा करने वाला, राग के आश्रय से धर्म मानने वाला भले ही त्यागी हो और व्रत पालन करता हो तथापि मिथ्या दृष्टि है। ये बात हमने कहाँ पढ़ी है लक्ष्मीबेन, आपको याद है? हाँ याद आ गए, रत्नकरण शावकाचार्य, आप क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाश, ये रत्नकरण शावकाचार्य में ही है। मेरे हिसाब से 32 नंबर का श्लोक होना चाहिए, श्लोक में शायद नंबर में गलती होती हो। क्या कह रहे, देखो बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। देखो जो जीव ऐसे मार्ग की सच्ची श्रद्धा रखता है, जो सच्ची श्रद्धा रखता है वो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होगा, उसको भले ही चारित्र दशा न हो यानी मुनि योग्य वितरागता न हो तथापि वह धर्मी है। धर्मी है कहा, इसका अर्थ क्या हो गया? वह सम्यक दृष्टि है। हाँ? और क्या कहते हैं, और इससे विपरीत श्रद्धा करने वाला कैसा है? वह राग के आश्रय से धर्म मानने वाला भले ही त्यागी हो और व्रत पालन करता हो तथापि मिथ्या दृष्टि है, बिगड़े हुए दूध के समान है। जैसे बिगड़े हुए दूध की अपेक्षा खट्टी छाछ भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह खाने के योग्य तो है मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी साधु की अपेक्षा सम्यक दृष्टि ग्रस्त श्रेष्ठ है। क्योंकि वह सम्यक दृष्टि ग्रस्त तो मोक्ष मार्ग का आराधक है और द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि बिगड़े हुए दूत के समान मोक्ष मार्ग का विराधक है। जरा एक मिनट, आपके पीछे वो रत्नकरण शाखाचार पुस्तक दिखाई देगी शायद आपको।
बत्तीस और तैतीस नंबर दो
रेड कलर की होगी, बहुत अच्छा।
32 और 33 होना चाहिए।
हाँ 34 है।
32 और 33 मोहि मुनि से गृहस्थ समय दृष्टि अच्छा है।
थर्टी थ्री है, चलो। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोही नैव मोहवान अणगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। क्या कहते हैं, जाके दर्शन मोह नाही ऐसा गृहस्थ है। तो जिसके दर्शन मोह नहीं है ऐसा कौन होगा? मैंने क्या कहा, जिसको दर्शन मोह नहीं है हाँ ऐसा गृहस्थ हो तो भी मोक्ष मार्ग में तिष्ठे हैं। और मोहवान ऐसा अनगार कहिए गृह रहित मुनि सो मोक्ष मार्ग नाही है। याही ते मोहवान जो मुनि ताते दर्शन मोह रहित गृहस्थ है सो श्रेयान याने सर्वोत्कृष्ट है। 33 नंबर है साहब ये।
और उसके पहले 32 में वो उसके जड़ के बिना फल फूल नहीं होते, बीज के बिना वो नहीं होता। वो
नहीं नहीं वो या
वो 32 नंबर है।
हाँ 32 नंबर में ये है, अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ। विद्या कहिए ज्ञान और वृत्त कहिए चारित्र, इनकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि और फल का उदय यह सम्यक तो नाही होते संते नाही हो है। जैसे बीज का अभाव होते वृक्ष की उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि और फल का उदय नाही हो है। अब आगे बढ़ेंगे। देह की क्रिया मुझसे होती है, उससे मुझे धर्म होता है, अथवा क्षणिक रागादि पर्याय जिनका भी मैं हूँ जितना ही मैं हूँ। क्या कहा, क्षणिक रागादि पर्याय जितना ही मैं हूँ ऐसी जो पर्याय बुद्धि है वह भी मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण है। ज्ञान का क्षयक्षम होने पर उसका अभिमान हो जाना भी पर्याय बुद्धि मिथ्या दृष्टि ही है। इस प्रकार एकांत तत्व के प्रतिपादक अन्य मत की मान्यता बाह्य वेश में शरीर की दिगंबर दशा में सत्यार्थपने का अभिमान तथा पर्याय में एकांत आत्मबुद्धि द्वारा अभिमान, ये तीनों अनंतानुबंधी कषाय के कार्य है। क्या क्या कहा, देखो देखो देखो, ये अनंतानुबंधी किसको है और किसको नहीं है ये देखना है। वो बहुत क्रोध करता है इसलिए अनंतानुबंधी है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहते, एकांत तत्व के प्रतिपादक ऐसे जो अन्य मती लोग है, अन्य मतियों के जो श्लोक सिद्धांत है उनकी मान्यता रखना यह क्या है, अनंतानुबंधी की उसमें यहाँ परिणति हो रही है। यानी अनंतानुबंधी की परिणति हो रही है, यानी वो कौन होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि ख्याल में। और बाह्य वेश में यानी शरीर की दिगंबर दशा में सत्यार्थपने का अभिमान, यानी बस बाह्य में नग्न अवस्था है तो मुनि, उसके भी क्या कहा, अनंतानुबंधी का वहां सद्भाव वर्त रहा है। और पर्याय में एकांत आत्मबुद्धि द्वारा अभिमान याने पज्जय मूढ़ा परसमय याने पर्याय जितना ही मैं हूँ, राग जितना ही मैं हूँ, जितना मेरा ज्ञान कार्य, क्या साहब हमारे ज्ञान में कुछ बैठता ही नहीं, हमारा ज्ञान तो एकदम अभी ऐसा हो गया ना, याद ही नहीं रहता है। तो जो पर्याय ज्ञान के हैं, ज्ञान की पर्याय उतना ही स्वयं को मानना, ख्याल में। लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं तो केवल ज्ञान स्वभाव ही हूँ, स्वभाव मेरा केवल ज्ञान है, पर्याय में तो ये बात चल रही है, लेकिन मैं इतना हूँ, तू परमात्मा छो एम पेला नक्की कर, ऐसी जो बात चल रही ना, वो तो स्वभाव की अपेक्षा, ऐसी हमारी मान्यता होगी तो पर्याय में जो हीनता है, दीनता है, अल्पता है, वो ऐसे परिपूर्ण स्वभाव की दृष्टि मान्यता करने से ही वो पर्याय में उसका स्वरूप प्रकट होगा। तो कहते हैं पर्याय में एकांत आत्मबुद्धि द्वारा अभिमान, यानी मैं देखो कितना पंडित हूँ, मैं देखो कितना ज्ञानी हूँ, ऐसी जो ज्ञान में या चारित्र में ऐसा अभिमान करते हैं, तो कह रहे हैं वो सब एकांत आत्मबुद्धि है। ये तीनों जो ऊपर के पॉइंट बताए, ये तीनों अनंतानुबंधी कषाय के कार्य है, यानी जिसके अनंतानुबंधी है, इनके ऐसे ऐसे बातें देखने में आती है, और मिथ्या दृष्टि के ही ये होते हैं। जिसको ये तीनों प्रकार की मिथ्या मान्यता नहीं होती और यथार्थ चिदानंद स्वभाव की दृष्टि से वितरागी शांति का अंश प्रकटा हो, वह समकीति का प्रशम गुण है। ये प्रशम गुण की बात चल रही है, यानी कैसा हो गया कि यथार्थ चिदानंद स्वभाव की दृष्टि हुई है और उससे क्या हुआ, वितरागी शांति का अंश प्रकटा हो, वह समकीति का प्रशम गुण है, उसको यहाँ प्रशम कहा। और हम क्या मानते हैं, कषाय की मंदता होना वो प्रशम, वो बात नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर कट बताया आगे। तथा बाह्य में अनुकूलता प्रतिकूलता होने पर उनमें एकत्व बुद्धि पूर्वक राग द्वेष समकीति को नहीं होते। मिथ्या दृष्टि जीव को परम एकत्व बुद्धि से राग द्वेष का भाव होता है, वह पर के कारण लाभ हानि मानकर राग द्वेष करता है श्वान की तरह। जैसे श्वान को कोई पत्थर मारे तो वह पत्थर को काटने लगता है, किंतु ज्ञानी को वैसे राग द्वेष नहीं है। ये यहाँ उन्होंने पत्थर कहा और टोडरमल जी ने लकड़ी बताई, हम काठी से लकड़ी से मारते हैं तो कभी तुमको काटने को नहीं आएगा, वो काठी को ही काटने को जाएगा, देख लेना एक बार हमें मार के। यहाँ तो स्वामी जी बता रहे कुत्ते को पत्थर मारे तो पत्थर को काटने लगता है, किंतु ज्ञानी को वैसे राग द्वेष नहीं है, तथापि ज्ञानी के राग द्वेष होते हैं। तथापि मिथ्या दृष्टि के भांति परम एकत्व बुद्धि पूर्वक के राग द्वेष ज्ञानी के नहीं होते। सिंह की तरह, क्या कहते हैं, जैसे सिंह को बंदूक से गोली लगे तो वह बंदूक के सामने नहीं देखता अभी तो गोली चलाने वाले पर झपट्टा मारता है, वैसे ही धर्मी संयोग के सामने नहीं देखता, अर्थात संयोग के कारण से राग द्वेष नहीं मानता, अपने भाव में अपने अपराध से विकार हुआ ऐसा जानकर स्वभाव की लीनता के बल से उन्हें टालने का प्रयत्न करता है। ये बहुत दोनों में तुलना जो की है ना, बहुत उत्कृष्ट है। ये समझ में आया क्या, बताना पड़ेगा, ख्याल में आया ना। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं, बाहर के अनुकूल प्रतिकूल संयोग के कारण मुझे राग द्वेष नहीं, ऐसे भेद ज्ञान की बुद्धि धर्मी को सदा वर्तती है और उस भेद ज्ञान पूर्वक कषाय का अभाव होना प्रशम है। समकीति की अनंतानुबंधी कषाय तो होती ही नहीं, इसके अतिरिक्त अन्य अल्प कषाय होती हैं और बाहर में आरंभादिक क्रिया में हिंसा होती है, किंतु वह उसको भला नहीं जानता। समकीति को लड़ाई इत्यादि का भाव भी होता है और विशाल विशाल जिन मंदिर बनवाने प्रतिष्ठा महोत्सव करवाने जैसा शुभ भाव भी होता है, किंतु वह उस राग को धर्म नहीं मानता और न आरंभ या हिंसा को भला जानता है। उस समय भी उसको अंतर की वितरागी कषाय अकषाय शांति का अंश वर्तता है। इसका नाम प्रशम है और भगवान और वह सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह है। अभी मुझे लगता है आप यहीं रुकेंगे, बाकी की बात कर लेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो